السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ہم سب کی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عشرہ رمضان نصیب فرمایا. یہ ایسا وقت ہے جو قسمت والوں کو مل سکتا ہے، اور جو اس وقت جاگ رہے ہیں اور یہ شوق رکھتے ہیں کہ وہ عبادت کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، بہت نفع کا سودا انہوں نے کر لیا. کیونکہ اگر اس وقت ہم کسی قبرستان میں چلے جائیں اور وہاں کے مکینوں میں کسی سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ اپنی یہ ایک رات ہمیں دے دو اور ہم سے جو چاہو لے لو. ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیا. اب آگے کرنے کا کام ہمارا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے چانس دے دیا ہے کہ وہ اپنی بخشش کروا لیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا ہے کہ وہ جہنم سے آزادی پا لیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ زندگی میں پھر اس جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ وہ اپنی جنت کما لیں، یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. ہم ان میں سے بھی ہو سکتے تھے جو اس وقت زمین کے نیچے ہیں، ہم ان میں سے بھی ہو سکتے تھے جو اس وقت کہیں بازاروں میں گھوم رہے ہیں، یا کسی کلب میں بیٹھے ہیں، یا فلموں کے آگے بیٹھے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بٹھایا، ہم اس کا شکر کیسے ادا کریں؟ ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اگر تو نے یہ موقع دے دیا ہے نا، تو اب ہمیں بخش بھی دینا، کیونکہ تو ہر ایک کو یہ توفیق نہیں دیتا. اب تو نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے، تو آگے اب ہمارے لیے بخشش کا سامان بھی کر دینا اور ہمیں جہنم سے آزادی بھی دے دینا. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ ہمارے اسلاف مانگا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، ہمیں پہنچا دیا جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں. اور میں کچھ لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو اس پچھلے سال میں ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، ان کو یہ مہینہ ہی نصیب نہیں ہوا، اور کچھ لوگوں کو یہ عشرہ نصیب نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر، اور ہم بس اس کے اندر شکر کے جذبات ہی رکھیں. تو اب یہ راتیں مل گئی ہیں تو ان کی قدر کرنی ہے. قدر کیسے کریں گے؟ ضائع کر کے نہیں ان کو. جس چیز کو آپ قیمتی سمجھتے ہیں اس کو تو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کی تو بڑی قدردانی کرتے ہیں نا. اگر آپ لیلۃ القدر کو قیمتی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میری تو خوش قسمتی، میرے تو بھاگ کھل گئے کہ میرے رب نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، تو سو کے ان راتوں کو نہیں گزارنا، شور اور ہنگامے میں نہیں گزارنا، مسجدوں کے باہر بیٹھ کے میلے ٹھیلے میں یہ راتیں نہیں گزارنی. یہ وہ راتیں نہیں ہیں جس میں جاگنے کے مقابلے ہو رہے ہیں، یہ کوئی خریداری کی جا رہی ہے، کہیں گپ شپ ہو رہی ہے، کہیں کوئی اور فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑی اچھی رات کو جاگ کے گزار رہے ہیں. किसने कहा कि जागना ही काफी है? जाग तो एक सिक्योरिटी वाला भी जाग रहा है, जाग रहे हैं तो और भी लोग वो जाग रहे हैं जिनकी ड्यूटीज रात के वक्त होती हैं। जो फरिश्ते आएंगे उन्होंने ये नहीं देखना कि जाग कौन रहा है, उन्होंने ये देखना है कि अल्लाह की इबादत में कौन जाग रहा है। लिहाजा ये रातें इसलिए हैं कि हम इनमें कयाम करें, कुरान करीम की तिलावत करें, तस्बीहात करें, दुआएं करें, नवाफिल की कसरत करें, कि एक एक नफल फर्ज के बराबर काउंट हो रहा है, और फर्ज तो 70 फर्जों के बराबर। ये दिन जल्दी गुजर जाएंगे, ये ना हो कि हम हाथ मलते रह जाएं, ये ना हो कि दोबारा फिर कभी ना मिले। तो इनकी कदर कीजिए, हमें तो बहुत बड़ा खजाना मिल गया, हम तो इस काबिल भी ना थे, ये अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे जगा के बिठाया हुआ। आज एक वाक्य मैं पढ़ रही थी जिसने मुझे बहुत इमोशनल कर दिया, फुसैल बिन अय्यास का। मैं सोचती हूँ कि कैसे कैसे लोग गुजरे हैं, हम तो अपनी छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि हमने तो कारनामे कर दिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो इतना कुछ करके भी कितने ज्यादा हम्बल थे, उसको कुछ नहीं समझते थे। फुसैल बिन अय्यास का आपने नाम तो सुना होगा, डाकुओं के सरदार थे, उनसे लोग थर थर कांपने थे, लेकिन जब उनकी जिंदगी बदली है तो कैसे बदली? एक रात, आधी रात के करीब एक घर की दीवार फलांग के अंदर दाखिल हुए और देखा, आए तो डाके के इरादे से थे, मगर आगे देखा कि एक इंसान खड़ा हुआ है नमाज में और कुरान करीम की तिलावत कर रहा है और एक ही आयत को पढ़ता जा रहा है, अलम यानी लिल्लदीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के ऊपर अभी वो वक्त नहीं आया कि इनका दिल अल्लाह के जिक्र से डर ही जाए? जैसे वो बंदा पढ़ रहा था, इनके जिस्म कांपने लगा और जिस्म पे अल्लाह ताला का खौफ ऐसा तारी हुआ कि फरमाया, बला या रब कद आन, क्यों नहीं मेरे रब, वो वक्त आ गया। हाँ, वो वक्त आ गया। बस एक आयत थी ये जिसने दिल पर ऐसी हैबत तारी की कि यहां से निकले हैं, वो तो भूल ही गया कि क्या करने आए थे, किस इरादे से आए थे। यहां से निकले हैं और एक काफला रास्ते में मिल गया, अंधेरा होने की वजह से कोई पहचान नहीं सका है कि ये कौन है। ये जाके उनके साथ बैठ गए, उनमें से एक आदमी दूसरे से कहने लगा, हम इस करीबी बस्ती में चले जाएं तो बेहतर है, क्योंकि इस रास्ते में फुजैल डाके डालता है। जब ये सुना ना, खौफे खुदा से लरजने लगे कि लोग मेरे से इतना डरते, मेरी बुराई इतनी ज्यादा हो गई, मैं अपने रब से नहीं डरता कि मेरी वजह से अल्लाह के बंदे कितनी मुश्किल में। बस उस दिन जो तौबा की है, ऐसी जिंदगी पलटी है, इनकलाब आ गया, इबादत में मशगूल रहने लगे, इल्म की तलाश में निकले और अपने इलाके से दूर, हिजरत के करीब, कूफा का शहर था, वहां गए, वहां पे इल्म लिया। आपको पता है ना, जब अल्लाह ताला किसी भलाई का इरादा फरमाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि उसको दीन की समझ अता फरमाता है। तो अल्लाह ताला का भलाई का इरादा था इनके साथ। अब फिर वो फुजैल बने कि इल्म लिया, जब तौबा की है ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या था? इल्म लेना, क्योंकि इल्म लेते हैं तो खशियत आती है, अल्लाह ताला की अजमत दिल में बैठती है, अल्लाह का डर बैठता है, अल्लाह ताला की पहचान होती है, तभी इंसान बदलते हैं। जब इल्म ही ना हो तो क्या है, जाहिल है बस, फिर ये इसी तरह है जैसे आज आप देख रहे हैं हालात। जब इल्म ही नहीं है तो रमजान भी क्या है, फेस्टिवल है, सहरियों की पार्टियां हो रही हैं, तारियों की पार्टियां हो रही हैं, इधर तरावी चल रही है, उधर बाहर गपशप हो रही है, कुछ पता ही नहीं कि ये वक्त कितना कीमती है। क्या जो बातें आज रात हमने करनी है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि सुबह को नहीं हम कर सकते? क्या जो डिस्कशंस हम करते हैं क्या वो ऐसी अहम है कि कुछ घंटों बाद हम नहीं उनको कर सकते, कि हम उनको डिले कर दे? मगरिब के बाद से तो हमारी जुबान पर एक कलमा होना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़न, लेकिन हम समझते ही नहीं, क्योंकि इल्म नहीं ना। जब इल्म नहीं होता तो इंसान को अपने अच्छे बुरे की भी पहचान नहीं होती, अपने नुकसान का भी अंदाजा नहीं होता वो कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। जैसे एक बच्चा है, उसको नहीं है इल्म के पढ़ाई उसके लिए कितनी जरूरी है, वो खेल कूद में लगा रहता है, माँ बाप कितना ही कहते रहे उसको समझ नहीं आ रही, उसको पता नहीं ना, माँ बाप को पता है, वो जोर देते हैं लेकिन बच्चे को समझ नहीं आ रही। तो इल्म में और इल्म वाले में और बेइल्म में बहुत फर्क होता है। तो जब इन्होंने इल्म लिया तो फिर कुरान को पढ़ा करते थे, जब कोई आयत आती थी ना जन्नत जहन्नम की, उसको बार बार पढ़ते और उनकी आहो बुका सुनी जाती थी। तो ये तभी होगा जब समझ आएगी, तो समझ ही नहीं आएगी तो फिर क्या, उधर इमाम साहब पढ़ते जा रहे हैं, उधर हमें पता नहीं किन किन ख्यालात में, हम कुएं में, हम कहीं और ही सैर पे निकले हुए, को हमें पता ही नहीं वो क्या कह क्या रहे हैं। इसीलिए इसहाक बिन इब्राहिम फरमाते हैं कि मैंने किसी को भी फुजैल से ज्यादा अल्लाह ताला से खौफ रखने वाला नहीं देखा था और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखने वाला नहीं पाया था, कि जब हदीस रसूल बयान करते थे उन पर हैबत तारी हो जाते थे, रात के वक्त उनके लिए मस्जिद में मुसल्ला बिछा दिया जाता था, रात के आखिरी हिस्से तक नवाफिल अदा करते थे, जब नींद का गलबा हो जाता था थोड़ी देर लेट जाते थे, फिर उसके बाद फिर उठते फिर पढ़ना शुरू हो जाते, इस तरह सुबह हो जाती। एक दफा मैदाने अरफात में शाम के वक्त बड़ी आजी से दुआ करने लगे, लेकिन इतना रो रहे थे कि दुआ भी नहीं हो रही थी, बार बार दुआ के दरमियान रोना हायल हो जाता था, बार बार अपने आप से कहते थे हाय मेरी तो रुसवाई, मेरी जिल्लत की कोई इंतहा नहीं होगी अगर मेरे रब ने मुझे माफी ना किया। कभी हमने सोचा कि हमारा क्या बनेगा अगर हमारे रब ने हमें माफ ना किया? सारी दुनिया को भी वो माफ कर दे और अगर मुझे ना माफ किया तो मेरा क्या बनेगा? हमने तो समझा है ना कि कोई बात नहीं, वो तो गफूर रहीम है, उसने माफ कर ही देना है, मुझे माफी मांगने की भी जरूरत नहीं। तो इनका ये हाल था, इस वाक्य ने मुझे आज ज्यादा परेशान किया कि याहिया बिन मुख्तार कहते हैं कि एक दफा मक्का में गया तो वहां पे मैंने एक रात फुसैल बिन अय्याज को रोते हुए देखा, तो जब मैंने वजह पूछी तो फरमाते हैं मुझे पता चला है कि पुल से रात बहुत लंबा है, 5,000 साल का फासला है उसका, 5,000 साल का फासला सिर्फ चढ़ने का है, 5,000 साल फिर उस पर चलना पड़ेगा और 5,000 साल में उस पे से उतरना होगा, तो ये हजारों साल का फासला, और इससे वही गुजर सकेगा जो खौफे खुदा से नातवां हो चुका होगा। पुल सिरात तो तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है, बाल से भी ज्यादा बारीक है, और मुझे तो ये पता चला है कि जन्नती जन्नत पे पहुंच जाएंगे तो 25,000 साल के बाद, ये वो बता रहे हैं कि 25,000 साल के बाद एक दूसरे से कहेंगे कि पुल से रात से सारे गुजर गए हैं या अभी भी कोई बंदा बाकी अटका हुआ है वहां पे, तो उनमें से बाज कहेंगे नहीं अभी भी कोई आदमी फंसा हुआ है उस पे। इसके बाद फरमाते हैं मैं इस वजह से रोता हूं कि शायद वो एक आदमी मैं हूं।
अकबर, अल्लाह अकबर, ऐसे अल्लाह के लोग।
या बिन अय्यूब कहते कि मैं और जाफिर एक दिन फुजैल के पास गए और उनके पास एक बुजुर्ग तशरीफ फरमाते। तो फरमाया उन्होंने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से और जिब्राइल अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से रिवायत की है, क्योंकि इन लोगों के नजदीक ना सनद की बहुत अहमियत होती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से और जिब्राइल अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से क्या रिवायत की है, और फिर कुरान की आयत तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ, वकूदुहुन नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो कहते हैं ये आयत उन्होंने पढ़ी है और फुजैल और उनके जो साथी है दोनों पे गशी तारी हो गए, और फिर कितनी देर के बाद उनको होश आया। ओ अल्लाह अकबर, उनको फिक्रे आखरत कितनी ज्यादा थी। आज फिक्रे आखरत इतनी भी नहीं कि हमें एक रात के लिए भी जगा दे। हम कितने बेफिक्र हैं, सोचती हूँ कि काश हमें भी ये फिक्रे लग जाए। हमें फिक्र क्या है, सोचेंगे हमारी फिक्रात क्या है? अगर कोई फिक्र लगी भी है, बल तो ज्यादा कोई फिक्र है ही नहीं, मौज मस्ती के मूड में रहते हैं, एंटरटेनमेंट के मूड में हर बात, फन के मूड में हर बात। फिक्रें देखें, ये होती है फिक्र। ये कितनी फिक्र थी, ये किसी जनाजे के साथ जाते थे तो ऐसी वाजो नसीहत करते थे, खुद भी रोते थे, लोगों को भी रुला देते थे। किसी ने पूछा आपका क्या हाल है, फरमाया किस हाल का पूछते हो, दुनिया के हाल का या आखरत के? अगर दुनिया के हाल का पूछते हो तो दुनिया तुम्हें इधर उधर हार वादी में लिए फिरती, और आखरत का हाल पूछते हो तो खुद सोचो उस आदमी का क्या हाल होगा जिसके गुनाह बहुत ज्यादा है, नेकियां बहुत कम है, उम्र खत्म हो चुकी, और उसने सफरे आखरत के लिए कुछ भी तैयार नहीं किया। हालांकि ये तो यकीनी है। फिर अपने आप से कहते हैं अफसोस है तुझ पे, तू हदीस सुनाने के काबिल है, या तू इस काबिल है कि तुझसे हदीस ली जाए? क्या तू अपने आप को नहीं जानता, तेरी हालत क्या थी? अगर ये लोग तेरी असलियत से वाकिफ हो जाएं तो ना तेरे गिर्द बैठे और ना तुझसे हदीस ली। क्या तुझे मौत याद नहीं, तुझे कब्र की तन्हाई याद नहीं? क्या तूने कभी किसी मैयत को दफन होते हुए नहीं देखा? इस तरह से करके अपने आप को याद दिलाते थे कि तू क्या चीज है, और तेरा सफर तो खत्म होने वाला है और तेरी तो तैयारी नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं क्या तुझे ये भूल गया कि लोग मैयत के लिए किस तरह गड़ा खोद के उसको उसमें रख देते हैं, और मट्टी डाल के पत्थरों से उस कब्र का मुंह बंद करके और चले जाते हैं? तो फिर उसके बाद रोते थे। तो कभी हमें भी ये तन्हाइयां मिल जाए ना, जैसे ये रातें हैं, इनमें अपने आप से बात करें और रोएं अल्लाह के आगे कि ये रातें रोने की और अल्लाह ताला को मनाने की। हम में से कामयाब सिर्फ वही है जिसकी बख्शीश इन रातों में हो गई, बाकी सब फेल है, फेल। पास हुए जिसके लिए अल्लाह ताला ने इन रातों में ये फरमा दिया कि मैंने उसको जहन्नुम से आजादी दे दी, जिसके लिए अल्लाह ताला ये फरमाते कि मैंने इसकी बख्शीश कर दी, उसको मुबारक हो, बाकी सब सिर्फ दौड़े और कुछ नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ्फा फ़ाफ़ अन। तो नींद आने लगे ना तो खुद को आखरत याद करवा लेना कि सफर शायद अब थोड़ा रह गया हो, अपने लिए बहुत लंबा टाइम ना समझे, और पता नहीं मौका दोबारा मिले कि नहीं मिले। जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं सब जिंदा है
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
और उनको मौका मिला है। अल्लाह का शुक्र, उसका करम है कि उसने एक मौका दे दिया। मौके बार बार नहीं मिलते, तो बात करने रब से और मना ले उसको कि वो बहुत करीम है, बहुत ज्यादा बख्शिश करने वाला। उसने यही देखना है कि हमारी तलब कितनी है, हम कितना ज्यादा चाहते हैं कि वो हमें माफ कर दे। तो हम अल्लाह ताला से बख्शिश भी मांगते हैं, जहन्नुम से आजादी भी मांगते हैं, उसकी रजा भी मांगते हैं।